नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी दी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में 9000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावों के सत्यापन के लिए झारखंड और उड़ीसा से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की अनुमति दी। निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में राष्ट्रीय घोषणा 2026 को मंजूरी के साथ संपन्न हुआ। हैदराबाद में 4 शीर्ष नक्सली नेताओं ने पुलिस के समक्ष समर्पण किया। दिल्ली की अदालत ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 के मुकाबले में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 165 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी।
जब से भाषा के आधार पर राज्यों के डिलिमिटेशन हुए, तब से एक बड़ी डिमांड थी कि केरला का नाम केरलम होना चाहिए। आज इस फैसले के बाद में माननीय राष्ट्रपति जी केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 राज्य की विधानसभा के पास भेजेंगे और उनके निर्णय के आने के बाद में भारत सरकार इसमें अगला स्टेप लेगी।
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 जिलों में रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की कुल लागत 9072 करोड़ रुपए है और ये 2030-31 तक पूरी हो जाएंगी।
जबलपुर से गोंदिया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, 231 किलोमीटर का है। महाराष्ट्र का गोंदिया जिला और मध्य प्रदेश का जबलपुर, मांडला, शिवनी, बालाघाट, इन सब में कनेक्टिविटी बहुत होगी। ओवरऑल वाराणसी, प्रयागराज से चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नॉर्थ से साउथ का एक पूरा कनेक्टिविटी ये प्रोजेक्ट देगा।
समिति ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्तावित सिविल एनक्लेव के विकास को भी स्वीकृति दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 1677 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक का निर्माण भी शामिल है।
धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर में एक नई ऊर्जा आई है। देश दुनिया से सभी लोग कश्मीर जाना चाहते हैं, वैली जाना चाहते हैं और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सब में लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एयर का ये टर्मिनल नया बनेगा, काफी बड़ा टर्मिनल बनेगा और इसमें 6 नए एयरो ब्रिजेस बनेंगे और अगले 4 साल में कंप्लीट होगा।
मंत्रिमंडल ने गुजरात मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के मौजूदा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को गिफ्ट सिटी से शाहपुर तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट TD3 ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,925 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेवा तीर्थ को संवेदनशील, जवाबदेह और जन केंद्रित शासन का वैश्विक उदाहरण बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री वैष्णव ने बताया कि सेवा तीर्थ में आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सेवा संकल्प प्रस्ताव में संकल्प लिया गया है कि 2047 तक भारत को समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में ये परिसर राष्ट्रीय आकांक्षाओं का सशक्त केंद्र बनेगा।
सेवा तीर्थ में सेवा के मैसेज को रीअफर्म किया गया, रीएम्फेसाइज किया गया। सभी कैबिनेट के मंत्रियों को सबके साथ डिटेल में डिस्कशन हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरगामी सोच को किस तरह से रिफॉर्म्स में कन्वर्ट करें, किस तरह से हर नागरिक के जीवन में सुधार आए, नई अपॉर्चुनिटीज बने, वो सब इस रेजोल्यूशन में स्पष्ट तौर पर दिखता है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत 80 लाख दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए सिविल न्यायाधीशों की तैनाती और पड़ोसी राज्यों झारखंड तथा ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को बुलाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एक पत्र पर ध्यान दिया। पत्र में कहा गया है कि 250 जिला न्यायाधीशों को सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 80 दिन लगेंगे। समय की कमी को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीशों की तैनाती की अनुमति दी। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को दोनों राज्यों से अधिकारियों की तैनाती का खर्च वहन करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति भी दी है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में राष्ट्रीय घोषणा 2026 की सर्वसम्मति से स्वीकृति के साथ संपन्न हो गया है। इसमें कहा गया है कि निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करना लोकतंत्र की आधारशिला है और चुनावों का पारदर्शी तथा कुशल संचालन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। साथ ही राष्ट्रीय और संवैधानिक हित में आयोग ने देश भर के सभी राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ संभावित चुनाव प्रक्रियाओं के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य तंत्र और कानूनी रूप से व्यवहार्य ढांचे विकसित करने का सुझाव दिया है। ये गोलमेज सम्मेलन 27 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया गया है। पिछला सम्मेलन वर्ष 1999 में हुआ था। तेलंगाना में आज हैदराबाद में 4 बड़े माओवादी नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस ने समर्पण करने वाले प्रत्येक माओवादी को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा।
सीपीआई माओइस्ट पॉलिट ब्यूरो मेंबर तिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी ने आज तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उनके साथ बाड़े चौक्का राव मल्ला राजरेड्डी और नोने नरसिम्हा रेड्डी जैसे अन्य शीर्ष नेताओं ने भी आत्मसमर्पण किया। डीजीपी ने बताया कि पिछले 2 वर्ष में विभिन्न स्तरों के कुल 591 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना के रहने वाले केवल 11 सदस्य अभी अंडरग्राउंड में हैं, जिनमें से कुछ पुलिस के संपर्क में हैं और जल्द ही बाहर आ सकते हैं। आकाशवाणी के लिए हैदराबाद से मांकाली श्रीनिवास।
दिल्ली की एक अदालत ने आज भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिब को इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में हुए विरोध प्रदर्शन मामले में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को पुलिस ने बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण हरि, बिहार प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना से नरसिम्हा यादव को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा है कि उसे विरोध प्रदर्शन के संबंध में ठोस सबूत मिले हैं। अपराध शाखा के विशेष आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जाँच अपराध शाखा के अंतर राज्य प्रकोष्ठ को सौंप दी गई है।
मामला दर्ज होने के बाद से अब तक कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में इंडियन यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इस प्रक्रिया में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिब जी को भी गिरफ्तार किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी ने आज भोपाल की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी को केवल घृणा, नकारात्मकता और अराजकता ही दिखाई देती है।
किस तरह राहुल गांधी जी ने अपने पद की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस पार्टी और खुद को एक रनिंग जोक यानी एक मजाक बना दिया है। आज मध्य प्रदेश में जिस तरह का विश्वमन उन्होंने करा है, ये किसी भी तरह की मर्यादा का ही उल्लंघन नहीं करता, बल्कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये अराजकता है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निजी क्षेत्र, परोपकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों से भारत को स्वास्थ्य सेवा के केंद्र के रूप में विकसित करने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। महाराष्ट्र के मुंबई में आज उन्होंने जीवन बचाना और स्वस्थ भारत के निर्माण नामक राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य के महत्व पर बल दिया और आयुष्मान भारत सहित सरकार की विभिन्न पहलों का उल्लेख किया।
देशभर में 1,80,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करीब 12 करोड़ परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये का स्वास्थ्य उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन इसराइल की यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी ये दूसरी इसराइल यात्रा होगी। इस दौरान श्री मोदी इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा तथा सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक खेकसोंग से भी मुलाकात करेंगे। यरूशलम में इसराइल में भारत के राजदूत जीपी सिंह ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और इसराइल एकमत हैं।
On terrorism front, India's policy is very...
आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं हमारी नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की है। मेरा मानना है कि भारत और इसराइल की एक ही सोच है और जब भी कोई संकट आया है दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं।
भारत इसराइल मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर कल नई दिल्ली में शुरू हुआ और बृहस्पतिवार तक चलेगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों को इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य में शांति और सद्भाव के लिए नई सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के पर्वतीय और घाटी दोनों क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने का भी आग्रह किया। नागालैंड में दीमापुर के पुलिस आयुक्त ने कहा है कि राज्य में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट पीएपी प्राप्त करना अनिवार्य है। पुलिस ने कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा छूट वापस लेने के संबंध में बार बार सलाह जारी किए जाने के बावजूद अनिवार्य परमिट प्राप्त किए बिना विदेशी नागरिकों का नागालैंड में प्रवेश जारी है। पल्लिकेले में T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 165 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने दूसरे ओवर में 1 विकेट पर 7 रन बना लिए हैं। प्रतियोगिता में कोलंबो में कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा। महिला एक दिवसीय क्रिकेट के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। 215 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 39वें ओवर में ही हासिल कर लिया। दूसरा मुकाबला 27 फरवरी को होबार्ट में खेला जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण आज हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया। यह अभ्यास 16 मार्च तक चलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी दी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के अंतर्गत दावों के सत्यापन के लिए झारखंड और उड़ीसा से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की अनुमति दी। निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में राष्ट्रीय घोषणा 2026 को मंजूरी के साथ संपन्न हुआ। हैदराबाद में 4 शीर्ष नक्सली नेताओं ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।